हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज फिर हमारे इस बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का प्रथम अध्याय अब और रोचक हो रहा है, जिसमें दुर्योधन उसने अपना कथन अब संपन्न किया। पिछले बुधवार को जो हमने श्लोक लिया याद है, जिसके अंदर दुर्योधन बाकी योद्धाओं को कह रहा है कि कैसे उन्हें भीष्म पितामह का संरक्षण करना है। और इसके दो कारण थे। सबसे पहले तो दुर्योधन सोच रहा था कि अब तक मैं द्रोणाचार्य से वार्तालाप कर रहा था और मैं द्रोणाचार्य और पांडव इनकी सेनाओं को इनका गुणगान मैं कर रहा था, तो बाकी सारे योद्धा शायद ये मायूस हो गए होंगे, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम्हारी क्या भूमिका रहेगी वो बता रहे हैं। और भीष्म पितामह वो क्योंकि सेनापति हैं, तो यदि सेनापति को कोई आग्रह कर कुछ नहीं कह रहा तो सेनापति फिर कैसे उत्साह दिखाएंगे इस युद्ध में, और वो भी भीष्म पितामह जैसे सेनापति जो कि पांडवों के प्रति सहानुभूति रखे थे। तो दुर्योधन इन सब पहलुओं को देखते हुए परखते हुए दुर्योधन अब बाकी योद्धाओं को कह रहा है कि भीष्म एवा भी रक्षन्तु। और हमने इसकी चर्चा की कि यहां पर दुर्योधन वो कोई वैष्णव सेवा नहीं कर रहा कि भीष्म पितामह जैसे महान वैष्णव महाजन की वो रक्षा हेतु जो कथन कह रहा है तो वो कोई सेवा कर रहा है, वैष्णव सेवा नहीं, उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। तो दूसरे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने क्या क्या किया ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्यों बताया संजय ने धृतराष्ट्र को? ये 2 से 11 का जो श्लोक है ये संजय ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में क्यों बताया? हाँ, क्योंकि धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया मामका, तो इतने सारे श्लोक, ये 9 श्लोक जो थे ये धृतराष्ट्र का जो सुपुत्र एक दुर्योधन उसके विषय में, उसके संदर्भ में था। तो अब कल्पना कीजिए कि हमने कितने 9 बुधवार तो ले लिए होंगे एक एक श्लोक को लेकर, तो यदि इतने समय तक कोई बोल रहा है और वो भी द्रोणाचार्य और भीष्म को उल्लेख करते हुए, तो यदि कोई किसी से इतने समय तक बात कर रहा है तो कोई उत्तर तो देना चाहिए ना इनको। तो द्रोणाचार्य जो इतना सुने, भीष्म पितामह जो इतना सुने, तो कुछ उत्तर तो देना चाहिए इनको। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया? एक शब्द भी नहीं कहा। इन दोनों ने एक शब्द भी दुर्योधन से ये भी नहीं कहा हां या ना या अच्छा सुना मैंने, ठीक है। कई बार हम लोग फोन पर बोलते रहते हैं ना, जब किसी से बात नहीं करना होता तो बोलते रहते हैं हाँ ठीक है, और कई बार वो फोन को रख दिया है और हमको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, हम बोलते रहे ठीक है हाँ। तो दुर्योधन को द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने एक शब्द भी नहीं कहा उत्तर में। तो क्या ये बहुत अपमानजनक बात नहीं है? तो यहां पर ये जो श्लोक हमारे सामने हैं, ये एक थोड़ा अलग से श्लोक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि भीष्म पितामह अपने कार्यों द्वारा कि उन्होंने क्या किया, उसके द्वारा वो क्या संकेत दे रहे हैं दुर्योधन को। तो आज का हमारा है 12वां श्लोक, तस्य संजयनन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य संजयनैन हर्षन् कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तस्य संजयनैन हर्षम् कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तो यहां पर क्योंकि दुर्योधन ने अपना अंतिम श्लोक, 11वां श्लोक, पिछला श्लोक वो भीष्म पितामह के संदर्भ में कहा था, तो यहां पर संजय अब भीष्म पितामह ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई ये 12वें श्लोक में बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह को यहां पर पितामह, कुरुवृद्ध और फिर प्रतापवान, ये भी भीष्म पितामह को कहा गया है। और फिर कहा कि दुर्योधन को हर्ष देने के लिए, तस्य संजयनयन हर्षम, कि दुर्योधन को हर्ष देने के लिए कुरुवृद्ध पितामह उन्होंने क्या किया, सिंहनाद कि सिंह की गर्जना के समान, सिंहनादम विनद्योच्चै, अपना शंख उन्होंने उठाया और सिंहनाद के समान अपना शंख उन्होंने बजाया। तो इस श्लोक में केवल इतना ही संजय कहते हैं कि भीष्म पितामह ने एक अक्षर, एक शब्द नहीं कहा, अपना शंख उठाया और शंख को बजाया। तो दुर्योधन के उत्तर हेतु द्रोण एवं भीष्म मौन रहे और इसके विरुद्ध जब युधिष्ठिर महाराज वो जब द्रोण और भीष्म के समक्ष गए, कब, भगवद गीता जब भगवान ने पूरी सुना दी अर्जुन को, तो भगवद गीता पूरी होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज, हमने इसकी चर्चा की, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ उतार कर, आयुध उतार कर वो जाते हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उन्होंने कोई इतने सारे 9 श्लोक नहीं कहे, परंतु युधिष्ठिर महाराज को बोलकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर महाराज को बोलकर, और वो भी क्या बोलकर, केवल इतना नहीं बोला कि विजयी भव, दोनों ने बताया कि हम कैसे मर सकते हैं। वो अपना रहस्य दोनों को बताया, दोनों ने अपना अपना रहस्य युधिष्ठिर महाराज को बताया। द्रोणाचार्य ने भी युधिष्ठिर महाराज को बताया कि केवल मैं विजयी भव नहीं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, परंतु कैसे विजयी भव इसकी सूची भी मैं तुम्हें दूंगा कि मुझे कैसे तुम मार सकोगे। और यह सब कुछ दुर्योधन को सुनाते हुए कि तुमने इतना बड़बड़ किया, अब सुनो हम युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं, कि युधिष्ठिर महाराज को हम बता रहे हैं कि वो कैसे हमें मार सकते हैं। भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ बता दिया कि तुम मुझे कैसे मार सकोगे। तो देखिए यहां पर अंतर, दुर्योधन जिसने इतना कुछ कहा, उसकी चापलूसी भरी बातें और यहां पर युधिष्ठिर महाराज, दोनों में अंतर देखिए कि प्रतिक्रियाएं दुर्योधन अपने द्रोण की और भीष्म की। अब यहां पर ये मौन रह रहे हैं। तो शास्त्रों में मौनता के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है कि मौन, या जब कोई व्यक्ति साइलेंस जिसे कहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस इज मोर पावरफुल समटाइम्स देन स्पीकिंग, कहा गया है। तो शास्त्रों में हम कुछ उदाहरण लेंगे कि केवल मौन रहने के क्या परिणाम हुए हैं। जैसे यहां पर भीष्म पितामह और द्रोण दोनों मौन, कोई कुछ नहीं कहा, तो मौन रहने के कौन कौन से परिणाम, मेरे पास कुछ एक दो उदाहरण हैं। तो इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास कौन कौन से उदाहरण आपको याद आते हैं कि मौनता के वजह से कोई बहुत बड़ी घटना घड़ी मौन रहने के वजह से। हाँ, यहां पर दुर्योधन, आप लोग सब सुने कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मौन रहे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो दुर्योधन उस बात को भी याद रख रहा है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो ये लोग दोनों शांत थे, मौन थे। तो इसलिए दुर्योधन को थोड़ा लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे पक्ष में हैं, तो इसलिए दुर्योधन का हौसला थोड़ा बढ़ रहा था वो इनकी शांतता को याद करते हुए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। और कौन सा उदाहरण? हाँ, तो ये उदाहरण हमारे पास भी यहां पर है, महाराज उत्तानपाद और ध्रुव की। ये कथा तो हम बहुत बार सुने हैं। ध्रुव महाराज बैठना चाहते थे अपने पिता की गोद में और सुरुचि उनके सौतेली मां ने उतार दिया ध्रुव महाराज को और बहुत कटु शब्द कहे, और ध्रुव महाराज वो कटु शब्द से इतना ज्यादा नहीं घायल हुए जितना अपने पिता की तरफ जब उन्होंने देखा और वो पिताजी मौन रहे, तो पिताजी की मौनता को देखते हुए ज्यादा उन्हें ठेस पहुंची। कई बार होता है ना, जब झगड़ा होता है किसी के बीच में, तो जब कोई निकट का व्यक्ति बीच में आकर सहायता न करे तो ज्यादा चोट पहुंचती। कि यदि कोई घर में आया है किसी बात पर झगड़ा कर रहा है, कोई पड़ोसी आकर झगड़ा कर रहा है, तो पड़ोसी आकर वो चिल्ला रहा है, तो जो घर की गृहिणी है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है, वो भी चिल्ला रही है, और पतिदेव न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो फिर वो चिल्लाते चिल्ला, अरे तुम कुछ कहोगे नहीं, है ना? तो पतिदेव बोले अभी कहने को रह क्या गया है, तो इतना सब कुछ सुना दिया उसको पहले से। तो कई बार जब कोई मौन रह जाता है तो उसमें ज्यादा कुछ ठेस पहुंचती है। तो ध्रुव महाराज ज्यादा घायल हुए, उत्तानपाद उनके पिता चुप रहे, तो वो आशा भरी आंखों से देख रहे थे अपने पिता की तरफ कि आप भी सहमत हैं क्या, आप भी मुझे अपने गोद में नहीं बैठने दोगे? और महाराज उत्तानपाद का मौन बहुत कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? कि मैं विवश हूं, जो मैं उन बहुत कुछ उनकी मौनता बोल रही थी। एक तो मैं विवश हूं, किस दृष्टिकोण से मैं विवश हूं, कि मैं इसके विरुद्ध नहीं कह सकता कुछ। किसके विरुद्ध? सुरुचि के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रिय है मुझे। तो क्योंकि ये प्रिय है इसलिए मैं इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। और वो मौन इसलिए रहे क्योंकि सुनीति के प्रति इतना प्रेम नहीं था उनका। सुनीति जो कि ध्रुव महाराज की असली माता, तो सुनीति के प्रति इतना प्रेम नहीं इसलिए मौन रहे। यदि सुनीति के प्रति प्रेम सुरुचि से ज्यादा होता तो वहीं पर उठाकर वो सुरुचि को दो तीन लगाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ध्रुव को नीचे फेंक रही। तो हालांकि वो मौन रहे परंतु उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ ध्रुव महाराज को संकेत दे दिया कि मेरा तुम्हारी माता के प्रति प्रेम नहीं, अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। और तीसरी बात यह कि महाराज उत्तानपाद यदि पूर्ण प्रकार से सहमत होते सुरुचि में तो बोलते, क्या बोलते कि इसने जो किया ठीक किया, तुम्हारी हिम्मत तो मेरे गोद में बैठा। तो पूर्ण प्रकार से सहमत नहीं थे सुरुचि के तरफ भी। तो देखिए इनकी दुविधा महाराज उत्तानपाद की। और कई बार हम भी ऐसी दुविधा में रहते हैं कि हम फिर शांत हो जाते हैं, साइलेंट मोड बोलते हैं ना, साइलेंट मोड में चले जाते कि हम इससे भी सहमत नहीं, इससे भी सहमत नहीं, और हम इसका भी मन नहीं दुखाना चाहते, उसका भी मन नहीं दुखाना चाहते। तो फिर न्यूट्रल पार्टी, शांत हो जाओ, मौनता उसको धारण कर लो। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि विशेष रूप से ये जो घटना है ध्रुव महाराज के जीवन की घटना, ये एक साधक के लिए बहुत सी शिक्षाएं दे रही हैं कि हमारे अंदर भी ये द्वंद्व रहता है। किसके अंदर द्वंद्व रहता है? हमारे अंदर, कि हम सुरुचि के प्रति अपना स्नेह दिखाएं या सुनीति के प्रति। अब ये देखिए दोनों के नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुरुचि और सुनीति। तो रुचि और नीति यदि इन दोनों को हम लें तो हमारे मन में भी ये द्वंद्व चलता रहता है कि हम किसके प्रति अपना झुकाव रखते हैं, अपने रुचि के प्रति या नीति के प्रति। और अक्सर झुकाव जाता किसकी तरफ है? रुचि के प्रति, कि मुझे जिसमें रुचि है, सुरुचि मुझे जिसमें सुरुचि है, और मुझे पता है कि मुझे जिसमें सुरुचि है वो मेरे सुनीति के विरुद्ध है, और इसके बीच में है ध्रुव। इसके बीच में कौन है? ध्रुव का अर्थ क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास। तो इसके बीच में है मेरा दृढ़ विश्वास जो कि मेरी गोद में बैठने के लिए आया, मेरी सहायता करने। कैसी सहायता? ताकि मैं अपनी सुरुचि से दूर हूं, परंतु मैं जानता हूं कि यह सही है, मैं जानता हूं कि यह गलत है, परंतु मेरे अंदर वो ध्रुव का संग छूटने के बाद, क्योंकि ध्रुव गोदी से उतर गए, तो वो दृढ़ विश्वास नहीं रहा उत्तानपाद के पास, वो कनेक्शन छूट गया। वो कनेक्शन छूट गया इसलिए सुरुचि के प्रति रुचि ज्यादा। तो एक साधक के जीवन में भी जब तक हम हमारे दृढ़ विश्वास के संपर्क में रहते हैं तब तक हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारा झुकाव सुनीति के प्रति या हमारे नीति के प्रति होना चाहिए या जो भी हमारी रुचि है उसके प्रति। इसलिए हमें अक्सर हमारी साधना भक्ति में भी हम मौन हो जाते हैं कुछ समय बाद, कि जब माया देवी और कृष्ण जब दोनों पुकारते हैं तो हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है, हम जानते हैं हमें कहां नहीं जाना है, परंतु क्योंकि यहां पर रुचि है और यहां पर इतनी रुचि नहीं बल्कि यहां पर नीति को देखते हुए जाना है, तो हम महाराज उत्तानपाद के समान शांत। तो इसलिए एक बार मैं बंबई में एक बंबई में नहीं ये हाँ ये हमारा एक सेमिनार था मॉस्को में ब्रह्मचारियों के लिए, तो वहां पर हम बता रहे थे, ये अंग्रेजी में सेमिनार था, कि अलग अलग स्टेजेस कौन कौन से हैं एक साधक के। तो इसमें हम बता रहे थे कि सबसे पहला स्टेज है साधना भक्ति में आने से पहले, दैट ही सेज यस टू माया एंड नो टू कृष्णा। सो द यस इज वेरी डिटरमाइंड एंड नो इज ऑल्सो वेरी डिटरमाइंड, एंड देन व्हेन ही टेक्स अप टू साधना भक्ति देन ही कम्स टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो देन ही कांट से यस टू माया एंड ही कांट से नो टू कृष्णा, but he can't say yes to Krishna also and he can't say no to Maya also. So he doesn't say no to Krishna, but he says wait to Maya. That is the next stage. And then at certain point of time he says wait to Maya and wait to Krishna also. And then further on in his sadhana bhakti as he goes, he has to come to the stage wherein he at least should begin to say wait to Krishna, no to Maya. That is from the positive side. And the ultimate is when he says yes to Krishna, no to Maya. So what is sadhana bhakti? From yes to Maya, no to Krishna, to yes to Krishna, no to Maya. But the journey in between has all these waiting rooms and all these other, you know, halting places. तो इसलिए यहाँ पर ये जो घटना है ये बहुत ही शिक्षाप्रद है कि जिसके अंदर हम सीख सकते हैं कि सुरुचि और सुनीति, इसमें हमें निर्णय लेना है कि मैं किस पर अपना झुकाव दिखाऊं, और वो निर्णय हम कब ले पाएंगे जब ध्रुव वो हमारे साथ रहेंगे, उनसे साथ छूटा तो सुरुचि के प्रति। और कौन सा उदाहरण? लिटिल लाउड लल बिफोर द स्टॉर्म, कि तूफान आने से पहले सब कुछ शांत महसूस होता है ना? तो कई बार झगड़ा शुरू होने से पहले, परिवार में झगड़ा शुरू होने से पहले एक साइलेंस छा जाता है, और उसके बाद फिर शंखनाद, सिंहनाद और नाद स्वरम सब शुरू होते हैं। I'm talking about some examples from the scriptures. कोई शास्त्रों से और उदाहरण? ये भी अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण। हाँ, जब प्रभु श्री राम, हाँ, क्योंकि प्रभु श्री राम जब वो वनवास के लिए उनको ये बताया गया कि तुम्हें वनवास जाना है, ये किसने बताया? दशरथ महाराज बोल ही नहीं पाए कई कई। तो प्रभु श्री राम को बुरा इसलिए नहीं लगा कि उन्हें वनवास जाना है, उन्हें बुरा इसलिए लगा कि मेरे पिता मुझे नहीं कह पा रहे, ये इसलिए उन्हें बुरा लग रहा था कि किसी और के थ्रू क्यों बोल रहे हैं, ये उनको बुरा लग रहा था। तो ये अच्छा उदाहरण है कि वो शांत रहे महाराज दशरथ। और एक यहां पर एक और उदाहरण है, महाराज परीक्षित और शमिक ऋषि, कि शमिक ऋषि वो अपने ध्यान अवस्था में थे और महाराज परीक्षित प्यासे वो जब श्रमिक ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया तो उन्होंने पूछा श्रमिक ऋषि से कि क्या आपके पास कुछ जल है। श्रमिक ऋषि शांत रहे। तो ये नहीं कि श्रमिक ऋषि जल नहीं देना चाहते थे या श्रमिक ऋषि द्वेष कर रहे थे परीक्षित महाराज से, ऐसा कुछ नहीं था। केवल वो शांत रहे उसके वजह से महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प श्रमिक ऋषि के गले में बांध दिया, जिसके वजह से फिर उनके पुत्र श्रृंगी ने अपराध किया और श्राप दिया महाराज परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक डस कर तुम्हें मार देगा। और ये एक अच्छा उदाहरण है, ये पॉजिटिव, कि श्रमिक ऋषि ने पानी नहीं दिया, अच्छा किया, वो शांत रहे, अच्छा किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके शांतता की वजह से हमें भागवत मिली, कि वो शांत रहे जिसके वजह से सुखदेव गोस्वामी बोल पाए। यदि श्रमिक ऋषि वहां बोल देते तो सुखदेव गोस्वामी शांत रहते। तो हमें इसमें भी चुनाव करना चाहिए कि किसे शांत रहना चाहिए और किसे बोलना चाहिए। तो यहां पर यह भगवान की योजना थी, जैसे किसी ड्रामा में डायलॉग्स होता है ना, तो डायलॉग में होता है कि एक को शांत रहना है, दूसरे को बोलना है, वो पहले से प्री डिसाइडेड है ना। और कई बार जब रियल लाइफ में चलता है वार्तालाप, उसमें पता नहीं लगता कि किसे शांत होना है, किसे बोलना है। कई बार फोन में भी बात कर रहे पे ऐसे हो जाता है ना, वो अपना अपना कुछ बोल रहा है और हम अपना बोल रहे हैं, अरे लेकिन उसका तो सुनो, अरे तुम मेरा तो सुनो। लेकिन जो प्री डिसाइडेड रहता है ड्रामा, उसमें पता है कि उसका डायलॉग, कई बार हम लोग जब बंबई में किया करते थे हमें केवल इतना याद रखते थे उसका लास्ट लाइन, और कई बार वो लास्ट लाइन भूल जाता था, हम वेट कर रहे हो लास्ट लाइन बोला नहीं अभी तक, तो हम यहां पे शांत, वो भी शांत, दोनों शांत, फिर एक दूसरे के बाद देख रहे हैं, बोला हो गया, अच्छा हो गया, फिर यहां से अपना डायलॉग शुरू। जैसे मुझे याद है हम लोग यमुनाचार्य का ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें यमुनाचार्य की कथा ऐसी है कि यमुनाचार्य वो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, और फिर कुछ जब बड़े होते हैं तो यमुनाचार्य उनको राजा का पद मिलता है और वो फिर भक्ति सब भूलकर वो इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, और फिर उनके जो गुरु यमुनाचार्य के दादाजी नाथ मुनि, वो भेजते हैं अपने एक शिष्य को कि यमुनाचार्य को फिर से वो भक्ति में लाएं। तो नाथ मुनि के शिष्य थे राम मिश्र, तो उन्होंने यमुनाचार्य को फिर से भक्ति में वो कैसे लाए कि उन्हें प्रसाद खिलाकर। ये एक शास्त्रीय उदाहरण है कि प्रसाद क्या क्या नहीं कर सकता, और वो भी कौन सा प्रसाद, एक शाक वहां पर उगा करती थी दक्षिण भारत में, तुडुवल्लई करके नाम है, वो आज भी उगती है, तो उसे भगवान को भोग चढ़ाकर और यमुनाचार्य को खिलाए करते थे। तो अब इस ये ड्रामा में हुआ क्या कि मैं यमुनाचार्य बना था, और वो सीन था कि जिसमें यमुनाचार्य को ये राम मिश्रा वो तुडुवल्लई बना के खिला रहे हैं। तो जिस दिन वो ड्रामा था उस दिन पूरे दिन हम लोग वो सेट लगाने में और प्रैक्टिस करने में, कॉस्ट्यूम में, इसमें इतना समय गया कि हमने पूरा दिन एक अन्न का दाना खाया नहीं, और शाम के 7 बजे वो नाटक शुरू हुआ, तो 3 घंटे का था वो नाटक, तो 7 से लेकर वो चल रहा था नाटक, और उसमें इतनी भूख लग रही थी मुझे। तो अब शाम के 7 बजे का जो भगवान का भोग चढ़ता है वो लोग प्लेट में सजा कर लाके रखे थे, उसमें एक शाक की सब्जी भी, ताकि दिखे लोगों को कि वो शाक की सब्जी भी है। तो हुआ क्या कि अभी मुझे वहां पर केवल एक्टिंग करना है खाने का, कि मैं एक दो बार ऐसे खाकर एक्टिंग करूंगा और फिर वो राम मिश्रा को मैं कहूंगा कि ये क्या तुमने मना है कि इसके अंदर कोई ऐसा जादू है कि मेरी वृत्ति बदल रही है, ये सब कुछ बोलना था। तो वो सामने पूरी है, सब्जी है, वो पूरा, क्योंकि राजा खा रहा है तो केवल एक शाक और पूरी तो नहीं होगा ना, तो पूरा राजभोग का प्लेट, जैसे राजा खा रहा है तो इतना बड़ा प्लेट था, उसके अंदर सब कुछ सजाए हुए था। तो इतनी भूख लग रही थी तो मैं वहां बैठा और सब चार पूरियां थी, सब चार पूरी चपाती और एक स्वीट था सब, और वो देख रहे हैं ये उनका टाइम हो रहा है, ये डायलॉग बोल नहीं रहे, तो खाना शुरू कर दिए। और सभी, क्योंकि केवल जो बैक स्टेज में थे उन्हें पता था, बाकी बाहर वालों को लगा कि, और वो ऐसा माइक था, ये वाला ऐसा माइक, तो उसमें सब आवाज आ रहा है वो कचर कचर खाने का, और वो पूरा चार पूरी खाने के बाद फिर शक्ति आई डायलॉग बोलने के, और फिर एकदम रियलिटी में जैसे साक्षात्कार मिलकर मैंने वो डायलॉग बोला कि क्या आज खिलाया तुमने मुझे। और फिर उन्हें लगा कि वाह, वो सभी कहे कि वो डायलॉग बेस्ट था। उसमें बिल्कुल भी कोई नाटकीय नहीं था कोई आपका कहना। तो किस मुद्दे पर हम कह रहे हैं? नहीं, 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 हाँ, कि जैसे ड्रामा में कब कब बोलता है कोई, कब शांत रहता है, वो प्री डिसाइडेड रहता है। तो हम इस मुद्दे पर बोल रहे थे कि ये प्री डिसाइडेड था कि समीक ऋषि को शांत रहना है और सुखदेव गोस्वामी को बोलना है, तो इनके शांत होने के वजह से सुखदेव गोस्वामी बोल सके। तो ये एक उदाहरण है। और एक उदाहरण किसी को याद आ रहा है? ये इतना परिचित आप लोग नहीं होंगे इस उदाहरण से। महाराज इंद्रद्युम्न और अगस्त्य मुनि, कि अगस्त्य मुनि वो वन से जा रहे थे और महाराज इंद्रद्युम्न वो तपस्या में थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न तपस्या में, तो उन्होंने देखा नहीं कि अगस्त्य मुनि वहां से गुजर रहे। तो महाराज इंद्रद्युम्न शांत जैसे शमक ऋषि, तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि क्योंकि तुम एक पशु के समान व्यवहार कर रहे हो एक मुनि के साथ, इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जानवर बन जाओ, पशु, और वो भी कौन सा जानवर? हाथी। तो वो बने फिर गजेंद्र, और फिर गजेंद्र की कथा। तो ये गजेंद्र मोक्ष की जो पूरी कथा है, ये कथा प्रारंभ हुई इंद्रद्युम्न महाराज शांत रहे उनके मौन होने की वजह से। तो कई बार श्रील प्रभुपाद भी अपने पुस्तकों में लिखे हैं तात्पर्यों में कि यदि कोई ठीक से बोलना नहीं आता तो शांत रहो, कि शांतता उससे ज्यादा अच्छी है। इसलिए कई बार मौनी बाबा भी आपने सुना होगा, कई बाबा होते हैं मौनी बाबा, कि वो 40 साल से कुछ बोले नहीं। और राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब वो हिमालय में और अलग अलग तीर्थ स्थानों में वो भ्रमण कर रहे थे प्रभुपाद से मिलने से पहले, तो वो कई मौनी बाबा से मिले थे। तो बता रहे थे कि कई मौनी बाबा जो 30-40 साल से कुछ बोले नहीं, परंतु आपस में एक साथ आते थे वो, और आपस में एक साथ आकर वो घमासान युद्ध करते थे शब्दों का। उनके पास एक वो स्लेट होता था और वो स्लेट में लिखते थे, तो आपस में उनका झगड़ा उस स्लेट के ऊपर से होता था। कि वो बोलेंगे नहीं, दोनों ने व्रत लिया है, एक शब्द बोलेंगे नहीं, परंतु स्लेट में लिखते थे, अरे तुम गधे हो एक नंबर के। फिर वो दूसरी स्लेट में लिखेंगे, और तुम क्या हो, तुम मुझसे बड़े। और दोनों वर्बल वॉर, वो बोल रहे थे कि वर्बल वॉर होता था दोनों के बीच में, लेकिन सब बिना कुछ बोले स्लेट पर लिखे। तो ये मौनी बाबाओं का बहुत यश बढ़ा हुआ था उस समय। तो बता रहे थे कि वो एक बार पशुपतिनाथ नेपाल में जो है वो दर्शन के लिए गए थे, और उस समय वो तो एक विचरण करता हुआ एक साधु उस वेशभूषा में थे, तो उनकी बड़ी दाढ़ी थी और बड़े बाल थे, और पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को अनुमति है और ये अमेरिकन, तो इन्होंने देखा ओनली फॉर हिंदूज, और वहां पर एक पहरेदार खड़ा था, वो सबको देख रहा था। तो ये राधानाथ महाराज उस समय जैसे ही अंदर उन्होंने जाने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सुना था पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, तो इन्हें दर्शन लेना था भगवान शिव जी का। तो वहां पर वो पहरेदार ने देखा, क्योंकि वो समझ में नहीं आया उसे कि ये भारतीय है या विदेशी है, क्योंकि इतनी बड़ी दाढ़ी थी और इतने बड़े बाल थे, और वो एक शॉल और साधु का जैसा वस्त्र होते हैं वो धारण किए थे। तो उसे पहले समझ में नहीं आया, तो वो ध्यान से देखने लगा, तो इनको समझ गया कि ये मुझे यहां पर आने नहीं। और उस समय उस दिन शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि के दिन उन्हें दर्शन लेना था, तो लाइन बाहर तक थी, मंदिर के गेट तक थी। तो ये वहां पर खड़े हो गए लाइन में। अब ना तो वो अंदर थे ना वो पूरा बाहर थे, तो वो गार्ड कुछ बोल भी नहीं सक रहा था, परंतु उसे पता था लाइन में खड़े हो मतलब अंदर जाने के लिए खड़े। तो वो गार्ड ने जाकर अंदर जाकर पुजारी से कहा कि कोई, मुझे तो डाउटफुल केस लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग आके चेक करो, समझ में नहीं आ रहा है कि ये। और वो लाइन इतनी लंबी थी कि वो अंदर भी घूम के मंदिर के चारों तरफ तीन चार लाइन सर्कल बन के वो अंदर, मतलब यदि वो लाइन में खड़े होते तो उनको पूरा दिन लग जाता दर्शन करने के लिए। तो पुजारी अंदर से आया बाहर देखने के लिए, तो पुजारी आया और पुजारी ने हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे, आप कहां से हैं। अब इनको तो हिंदी आती नहीं थी, तो इन्हें याद था कि यदि किसी को कुछ आपको उत्तर नहीं देना तो मौनी बाबा बन जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसे कर दिया मतलब मौनी बाबा। तो वो बोले अरे मौनी बाबा आए हैं। तो गार्ड को, अरे तुम मूर्ख, इनको रोक रहा है, वो लेकर गए सबसे आगे दर्शन कराने के लिए। और सबसे पहले दर्शन कराया उनको पशुपतिनाथ का, और उन्होंने अपना दर्शन किया, मौनी बाबा आप पहले दर्शन लीजिए, मौनी बाबा आए। तो दर्शन वगैरह सब लिया, और दर्शन लेने के बाद जब वो बाहर आए तो गार्ड देख रहा था ये कौन से मौनी बाबा है। फिर जैसे ही बाहर गए बोले थैंक यू। तो अब वो क्या कर सकता था। तो यहां पर देखिए, कोई शांत रहता है, कोई मौनी बाबा बन गया, ये मौन का अभी कितने और उदाहरण हम ले सकते हैं, यहां पर ही हमने कुछ उदाहरण ले लिए। और कोई उदाहरण याद आ रहा है आप लोग? हाँ, शकुंतला। हाँ नहीं, क्या बताइए क्या वो कथा है? दुर्वास मुनि ने श्राप दिया शकुंतला को कि वो भूल जाएगी कि जब राजा आएगा। ए, कोई लव स्टोरी है क्या? अच्छा, शायद आप थोड़ा भूल गए लगता है। ठीक है, जो भी है। और कोई उदाहरण, और कोई याद आ रहा है शास्त्र में उदाहरण जिसमें, या आप व्यक्तिगत उदाहरण भी दे सकते हैं, बहुत बार शायद मौन रहना पड़ता होगा आपको बहुत से समय, जैसे कई बार जब प्रवचन में हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं ना तो बहुत लोग मौन हो जाते हैं साइलेंट मोड में, जब पूछ लेते हैं कि कितने लोग पहली बार आए, कितने लोग माला कर रहे हैं, कितने लोग चार नियम का पालन कर रहे हैं, बाप रे इतने सारे प्रश्न एक साथ, तो ना तो हम उस पक्ष के ना इस पक्ष के, न्यूट्रल। तो यहां पर जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये मौन रहे तो भीष्म पितामह ने सोचा कि क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं इसलिए दुर्योधन को बहुत बुरा लगा होगा। तो भीष्म पितामह, उन्हें बुरा लग रहा था कि वो मौन रहे, इसलिए भीष्म पितामह ने फिर शंखनाद किया। तुरंत उन्होंने अपना शंख उठाया और शंख के द्वारा वो बोले, शंखनाद के द्वारा भीष्म पितामह बोले। तो सबसे पहला कारण क्या था, दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु, कि दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु कि भाई तुम इतना बोल रहे हो तो मैं बिना समय गवाए, तुम्हें उत्तर न देकर बिना समय गवाए मैं अब युद्ध करूंगा सीधा। शंख बजाने का यह एक संकेत था कि अब मैं सीधा युद्ध ही शुरू करने वाला हूं, कि तुम चिंता मत करो अब दुर्योधन, तुमने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सिद्ध करने के लिए अब मैं तैयार हूं युद्ध करने के लिए। तो इसलिए बहुत दुर्योधन हर्षित हो रहा था जैसे ही उसने शंखनाद सुना, तो ये एक कारण था कि शंखनाद करने का। अब दूसरा कारण ये था कि दुर्योधन को पांडवों की विजय का संकेत दुर्योधन को देना था। कैसे, जैसे शांतता में बहुत कुछ बताया जा सकता है, वैसे ही भीष्म पितामह अपने शंखनाद द्वारा भी बहुत कुछ बता रहे थे। तो ये दो चीजें, एक तो दुर्योधन को प्रसन्नता और संकेत दुर्योधन को कि तुम हारने वाले हो दुर्योधन। तो कैसे आप समझोगे इसे, क्या कनेक्शन है पांडवों की विजय का और भीष्म पितामह के शंखनाद का, क्या कनेक्शन है? भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज में, अपने एक भुजा में वो क्या धारण करते हैं, शंख। भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह है उसमें से एक चिन्ह है शंख। तो शंख ये चिन्ह है भगवान श्री विष्णु का। तो मानो भीष्म पितामह शंख को उठाकर दुर्योधन को दिखा रहे हैं कि ये चिन्ह किसका है जानते हो ना, और वो कहां पर है, कहां वहां पर खड़े हैं, तो मैं इसलिए बजा रहा हूं कि जिनका चिन्ह है उनकी विजय होने वाली है, तुम भूल जाओ जो 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 तुम अपनी आशाएं बांध के रखे हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो हालांकि वो बोलते ना मराठी में, कई बार हमको पेटता नहीं है ये सब, लेकिन दुर्योधन को पेट गया हाँ, ट्यूबलाइट जल गया उसका कि ये शंख तुरंत इतना जोर से बजाए हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं मुझे। तो दुर्योधन के अंदर ये दोनों, वो हर्षित भी हो रहा था और थोड़ा डर भी गया था कि इसका ये भी संकेत हो सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने हाथों में शंख को धारण किए हैं तो ये उनका चिन्ह है, तो उनके चिन्ह होने की वजह से ये शायद ये संकेत मुझे मिल रहा है। अब गीता के 18वें अध्याय में ये जो 27वां श्लोक है, इसमें भगवान रजोगुणी कर्ता के 6 लक्षण बताए हैं जो कि दुर्योधन में सभी दिखाई देते हैं। और ये इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद दुर्योधन पूरी गीता में कहीं पर नहीं आने वाला, तो अभी उसका लास्ट सीन है, तो दुर्योधन का लास्ट सीन है, इसलिए जाते जाते थोड़ा दुर्योधन के विषय में और हम चर्चा कर लें, क्योंकि अगली बार से उसका पत्ता कट होने वाला है। तो कौन से 6 लक्षण बताए हैं एक रजोगुणी व्यक्ति के, क्योंकि इसमें हमें केवल ये नहीं देखना कि दुर्योधन के अंदर ये सारे लक्षण हैं, हमें क्या देखना है कि हमारे अंदर भी अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी हैं हमारे अंदर, और कम ज्यादा मात्रा में। तो कौन कम है, कौन ज्यादा है, ये अपने आप में हमको परख लेना है। तो रजोगुणी दुर्योधन के 6 लक्षण जो कि भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में 27वें श्लोक में बताए हैं। सबसे पहला लक्षण कि जो रजोगुणी होता है उसके अंदर राग, राग का अर्थ क्या है? नहीं नहीं, वो तो मराठी में हो गया गुस्सा, आसक्ति। राग द्वेष विमुक्तैश्चय, भगवान गीता में कहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाता है वो राग और द्वेष ये दोनों के परे रहता है। तो राग कहते हैं आसक्ति और द्वेष कहते हैं, आप समझते हैं द्वेष, ईर्ष्या। तो दुर्योधन अब अपने इन 9 श्लोकों में दुर्योधन ने अपना राग और द्वेष दोनों दिखा दिया कि जब वो पांडवों की सेना का गुणगान कर रहा था उसके अंदर द्वेष था, तो पांडवों की सेना का गुणगान करते हुए अपना द्वेष वो दिखा रहा था। और अब यहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इनका जो भी गुणगान वो कर रहा है इसके अंदर वो अपना राग दिखा रहा है। तो दुर्योधन के अंदर ये दोनों राग और द्वेष जो कि एक रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं, वो दुर्योधन के अंदर दिख रहे हैं। और दूसरा लक्षण एक रजोगुणी व्यक्ति का है जो हर समय कर्म फल की इच्छा रखता है और उसका हरेक कार्य, हरेक शब्द, हरेक विचार, उसका विचार, उसके शब्द और उसके कार्य, कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों किस दिशा में रहते हैं, क्या मिलेगा फल, फल क्या मिलेगा। और दुर्योधन उसका सारा जीवन केवल यही था, इसलिए इन 9 श्लोकों में भी पूरे दुर्योधन का परिचय आप देख लोगे कि दुर्योधन कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है, किसके संदर्भ में, हर एक शब्द के पीछे छिपा अर्थ है, डबल मीनिंग, जिसके अंदर वो कोई फल चाह रहा है। तो हर समय दुर्योधन इसी फल की इच्छा में रहता कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें से क्या मुझे मिलेगा। अब देखिए यहां पर दुर्योधन इसी हेतु से रणभूमि में आया है कि उसे क्या मिलेगा, और दुर्योधन के विपरीत अर्जुन, अर्जुन वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इनको क्या क्या दे सकता हूं। दोनों में अंतर देखिए, क्योंकि अर्जुन सत्वगुण में स्थित हैं, इसलिए अर्जुन निस्वार्थ भावना से रणभूमि में उनके विषय में सोच रहे हैं जो उनके शत्रु पक्ष में खड़े हैं, उनके विषय में, दुर्योधन जैसे के विषय में जिसने अर्जुन की ही पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, उसी के विषय में सोच रहे हैं जिसने पूरे जीवन भर इन्हें मार डालने का प्रयास किया। और ये दुर्योधन उसी रणभूमि में केवल अपने विषय में सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, मुझे राज्य मिलेगा कि नहीं। तो ये अंतर है दुर्योधन और अर्जुन में, तो ये अंतर है रजोगुण और सत्वगुण में। लोभी, हर समय दुर्योधन उसने केवल अपने लोभ का प्रदर्शन किया बचपन से, ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद अपने पिताजी के संपर्क में आकर वो लोभी बना, बचपन से वो ग्रेजुएट था कि वो हर प्रकार जो भी वस्तु भी होती गुरुकुल में या महल में, मुझे पहले, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी जब स्वाभाविक रूप से ये सारी इच्छाएं होती हैं कि मेरे लिए होना चाहिए, मेरे लिए, जैसे हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम जब अपने परिवार में या भक्तों के समूह में रहते हैं तो कितना हम दूसरों को देने के लिए इच्छुक रहते हैं। जैसे एक साधारण सा एक टेस्ट हम अपने अंदर ले सकते हैं कि जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कितना अपने प्लेट में डालना चाहते हैं और कितना हम दूसरों को बांटना चाहते हैं। इसमें हम अपना एक टेस्ट निकाल लेंगे कि क्या हम लोभी हैं या निस्वार्थ भावना से दूसरों को बांटने के लिए अपनी चेतना रखें। और ये एक साधारण सा उदाहरण है, ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं जिसके अंदर हम अपने आप को परख सकते हैं कि दुर्योधन ज्यादा है या अर्जुन। रजोगुणी व्यक्ति का एक और लक्षण है हिंसा करने वाला, उसके अंदर हिंसा करने की प्रवृत्ति तुरंत उसके हाथ पैर चलना शुरू कर देते एक रजोगुणी व्यक्ति, कि वो पहले शुरू करता है अपने मुख से वो स्टार्टर और वहां से फिर वो अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है। तो उसके अंदर हिंसा, और हिंसा शब्दों के द्वारा भी हो सकती है, तो हिंसा करने की प्रवृत्ति दुर्योधन के अंदर बचपन से ऐसी प्रवृत्ति कि उसने, हमने इसकी चर्चा की कि भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया और उसके पश्चात दुर्योधन ने लाक्षाग्रह में उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचा, वनवास, अज्ञातवास, क्या कुछ नहीं किया। तो ये सब हिंसा करने की प्रवृत्ति दुर्योधन के अंदर, और अपवित्र दृष्टि, दुर्योधन की कुदृष्टि हर समय रहती थी द्रौपदी के ऊपर, तो अपवित्र दृष्टि दुर्योधन की हर समय थी, और विशेष रूप से उसकी अपवित्र दृष्टि हुई क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो दुर्योधन फेल होकर आया, और वो भी ऐसा फेल होकर आया कि उसे वो रिपोर्ट कार्ड भी किसी दिखा नहीं सका कि ऐसा, मतलब कौन सा ग्रेड होता है, सी ग्रेड, उसे भी नीचे होता है, हाँ, डी, डी फॉर दुर्योधन तो उससे भी नीचे जा रहा था। तो इसलिए उसकी अपवित्र दृष्टि हर समय द्रौपदी के ऊपर रहती। और छठा लक्षण, हर्ष तथा शोक में हर समय डूबा हुआ जो रहता है वो है रजोगुणी करता, हर समय हर्ष और शोक। तो दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में वो गया, और युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में उसने जब खांडव प्रस्थ को देखा और वो महल को देखा तो उसके अंदर शोक उत्पन्न हुआ कि ये युधिष्ठिर के पास इतना हाईटेक महल कैसे। तो हमारे अंदर भी हम परख सकते हैं कि हम जब किसी के घर जाते हैं और देखते हैं इसके घर में ये टीवी कैसे आया, इसके घर में ऐसा फर्नीचर कैसे आया। तो यदि हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो रहा है उसे देखकर, तो फिर बोल परख लेना चाहिए कि दुर्योधन बोलना शुरू किया है अंदर। और दुर्योधन वो हर्षित कब हुआ, जब उसे समाचार मिला कि लाक्षाग्रह में कितने शव मिले, 6 शव मिले, तो दुर्योधन हर्षित हुआ, पार्टी मनाई उसने, सीक्रेट पार्टी की, दुशासन, कर्ण, इन सब को लेकर। तो दुर्योधन इन सब बातों से हर्षित होता और उन सब बातों से शोकग्रस्त होता। तो ये सारे लक्षण हैं एक रजोगुणी व्यक्ति के, कि रजोगुणी व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं जो कि दुर्योधन के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए गए थे। अब भीष्म पितामह को इस श्लोक में कहा गया है कुरुवृद्ध पितामह। तो कुरुवृद्ध क्यों कहा है, संजय क्यों बोल रहे हैं कुरुवृद्ध क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्द है वृद्ध, इसके दो अर्थ हैं। एक है वयोवृद्ध और एक है ज्ञान वृद्ध। तो वयोवृद्ध किसे कहते हैं, जो आयु से बड़ा हो गया हो, और एक जो आयु से कम है परंतु ज्ञान बहुत है, तो वो है ज्ञान वृद्ध। तो भीष्म पितामह दोनों थे, वो वयोवृद्ध भी थे और वो ज्ञान वृद्ध भी थे। परंतु दुर्योधन वो केवल, वो जब कह रहा है भीष्मा एवाभिरक्षन्तु, तो वो केवल सोच रहा है कि ये वयोवृद्ध है। दुर्योधन ऐसा मूर्ख, वो नहीं जानता कि इनसे मुझे क्या लेना चाहिए। ये ज्ञान वृद्ध हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान इनके अंदर है, पूरे जो मेरी सेना में सब लोग जो खड़े हैं इनमें सबसे ज्यादा ज्ञान भीष्म पितामह को था शास्त्रों का। इसलिए फिर हम यदि युधिष्ठिर और दुर्योधन की तुलना करें तो दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह ने केवल शंख बजाया, और युधिष्ठिर महाराज युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए, और वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह को पूछा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए कि कैसे मैं अब इस राज्य के कारभार को संभालूं। तो महाभारत में हम, यदि हमें समय कभी मिले तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, भीष्म पितामह के जो उपदेश हैं युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में, वो ऐसे दिव्य उपदेश हैं कि हरेक मनुष्य को उन उपदेशों को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि मुझे केवल इन्हें दंडवत कर इन्हें वयोवृद्ध के पद पर नहीं रखना, बल्कि मुझे इनके अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान वृद्ध है, वो इनसे मुझे लेना है। इसलिए हमें भी किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलें तो उसकी आयु से ज्यादा उसका जो ज्ञान है उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। कि अक्सर हमें लगता है कि यदि कोई बहुत जी लिया है तो बहुत ज्ञानवान होगा, तो कोई आवश्यकता नहीं कि कोई बहुत जी लिया है, 40 50 60 70 साल जी लिया है तो उसके अंदर हो सकता है बहुत मूर्ख हो। ज्यादा जी लेने से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, और इसलिए आदर होता है किसका, उस वृद्ध व्यक्ति का जो कि ज्ञान वृद्ध है। तो यहां पर युधिष्ठिर और दुर्योधन केवल पितामह उनका आदर कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है ये वयोवृद्ध है, और युधिष्ठिर महाराज हालांकि वो आदर कर रहे हैं कि इनकी आयु भी है, परंतु उससे ज्यादा युधिष्ठिर महाराज ने इनका आदर किया क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये ज्ञान वृद्ध है। इसलिए भीष्म पितामह ने केवल शंख का नाद सुनाया दुर्योधन को और ऐसी दिव्य शिक्षाएं दी युधिष्ठिर महाराज को। तो ये हम इस श्लोक से सीख रहे हैं कि भीष्म पितामह ने शंखनाद क्यों किया, और दुर्योधन अब जाते जाते उसने अपना क्या परिचय स्थापित किया है। संजय जो कि धृतराष्ट्र को सुना रहे, तो सुन लिया तुम्हारे पुत्र सुपुत्र ने क्या किया। तो ये 2 से लेके 11 श्लोक तक दुर्योधन के विषय में बताया है। अब आगे संजय बता रहे हैं कि उस रणभूमि में क्या क्या हुआ। तो अब शुरुआत हुई है भीष्म पितामह के शंखनाद से। तो इसके पश्चात अब और कौन कौन अपने अपने कैसे शंख बजाएंगे, और उनके शंख बजाने के पीछे उनके शंखों के नाम क्या हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। और आपको सूचना दे दें कि अगले गुरुवार से राम नवमी का महोत्सव शुरू होगा। 10 तारीख अगला गुरुवार है, चेक कर लो, 10 तारीख गुरुवार है ना, तो अगले गुरुवार से राम कथा प्रारंभ होने वाली है। और इस वर्ष हमारी राम कथा का विषय होगा अयोध्या खंड, कि पिछले बार हमने बाल खंड लिया था, इस बार होगा अयोध्या खंड, जिसके अंदर प्रभु श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, कई कई मंथरा और इन सब के विषय में चर्चा होगी। तो गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और सोमवार को रामनवमी का महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। तो ये सब सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे, और शायद हम कुछ बैनर वगैरह भी लगाएंगे बाहर, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बुला सकते हैं इस वर्ष के रामनवमी। और रामनवमी के दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तो इस मंदिर को रामनवमी, इस रामनवमी में 2 वर्ष हो जाएंगे, तो वो भी एक महोत्सव रहेगा, तो आप लोग सब आमंत्रित हैं उसके लिए। और एक सूचना आपको देना चाहेंगे कि हम इस रामनवमी से जो हम अब तक अनाउंसमेंट्स बीच में किए थे, काउंसलर सिस्टम जो हम चालू करने वाले हैं, वो रामनवमी से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हमें बहुत से नाम अब तक मिले नहीं हैं, जो हमारे पुराने भक्त और जो नए आना शुरू हुए हैं। काउंसलर सिस्टम जो नए आए हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आप पारिवारिक रूप से कैसे आपके परिवार में आपकी साधना भक्ति शुरू कर सकते हैं, इसके विषय में हर 15 दिन में मीटिंग्स होगी अलग अलग भक्तों के घरों में। तो ये काउंसलर सिस्टम हम चालू कर रहे हैं, तो आप लोग यदि आपके पारिवारिक जीवन में कृष्ण भक्ति को लाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम शर्मा प्रभु को दे दीजिए। आप थोड़ा खड़ा, शर्मा प्रभु पीछे खड़े हैं, तो कार्यक्रम के पश्चात आप लोग सब आपका नाम शर्मा प्रभु को दे दीजिए। और जो पुराने हमारे भक्त हैं उनको भी हम काउंसलर सिस्टम में न्योता दे रहे हैं, आप लोग भी सब आ सकते हैं, तो वो भी जो नाम नहीं दिए हमारे पुराने भक्त, वो भी शर्मा प्रभु को नाम दे सकते हैं, ताकि हम रामनवमी से काउंसलर सिस्टम शुरू कर दें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय।